तो जैसा कि पहले बताया गया था कि हम लोग ये पूरे साल आज से लेकर के नेक्स्ट ईयर आज तक चैतन्य चरितामृत का क्लास प्रत्येक रविवार को होगा या जब तक से खत्म न हो जाए पूरा चैतन्य चरितामृत, एक साल में हो जाना चाहिए। तो आज से प्रारंभ करेंगे और बीच बीच में किसी का आविर्भाव तिथि तिरुभाव तिथि है तो वो तो अलग से है, वो एक्स्ट्रा बोनस है, लेकिन रेगुलर जो है वो इस प्रकार से होगा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय एक श्लोक संख्या एक। वंदे गुरुं ईशभक्तान् ईशान ईशावतारकम् तत् प्रकाशं च तत् शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकां। वंदे गुरुं ईशभक्तान् ईशम ईशावतारकान् तत्प्रकाशाश्च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकान्। वंदे गुरुं ईशभक्तान् ईशम ईशम ईशावतारकान् तत्प्रकाशं च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकान्। वंदे गुरुं ईशभक्तान् ईशम ईशावतारकान् तत्प्रकाशश्च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगकाम। माताजी वंदे आई ऑफर माई रिस्पेक्टफुल ऑबिसेंसेस गुरुन अंटू द स्पिरिचुअल मास्टर्स ईश भक्तान अन टू द डिवोटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, ईशम अन टू द सुप्रीम लॉर्ड, ईशवतारकान अन टू द इनकारनेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, तत् ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, प्रकाशन अन टू द मैनिफेस्टेशंस, च एंड तत् ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, शक्ति अन टू द पोटेंसीज, कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य, संज्ञकम नेम। ट्रांसलेशन, आई ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ऑबिसेंसेज अंडर द स्पिरिचुअल मास्टर्स, द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इनकार्नेशन, हिज प्लेनरी पोर्शन, हिज एनर्जी एंड दिस एंड द प्राइमेवल लॉर्ड हिमसेल्फ श्री कृष्ण चैतन्य। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्जनिमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों का अति सौभाग्य है कि श्रीपाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का रसपान करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत जो है वो मास्टर डिग्री है, कोर्स है, ऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन जब तक से भगवान चैतन्य महाप्रभु का कृपा नहीं होगा तब तक से हम कृष्ण को समझ नहीं सकते हैं। नितायी करुणा होवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। जब चैतन्य महाप्रभु का कृपा होगा तो वृंदावन और राधा कृष्ण के संबंध में हम लोग समझ सकते हैं। प्रभुपाद जी अपने जीवन काल में सर्वप्रथम जब अनुवाद कर रहे थे तो चैतन्य चरितामृत पूरा खत्म करा लिए, पूरा हो गया। उसके बाद में भागवतम चल रहा था लेकिन भागवतम के दसम स्कंद के ही कुछ अध्याय तक प्रभुपाद जी कर पाए। चैतन्य चरितामृत बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये जो नाम है श्रीमद् भागवतम उसका बड़ा गूढ़ अर्थ है। श्रीमद् मतलब जो सुंदर हो और भा मतलब भासते, ग मतलब गीयते, व मतलब वर्तते, इन सब जगह है। भागवत और त मतलब जो ताप से या दुख से किसी के दुख को दूर कर सके वह है भागवत, या जो बहुत सुंदर है सब प्रकार से। वैसे ही श्री मतलब सब प्रकार से, सभी अलंकारों से विभूषित। चैतन्य चरितामृत का अर्थ है चैतन्य मतलब चेतना, और चरित चैतन्य चरित्र मतलब कैरेक्टर, और अमृत मतलब इमोर्टल। तो जो आत्मा है उसका स्वभाव क्या है, वह है इमोर्टल। ये हुआ श्री चैतन्य चरितामृत, वह आत्मा जिसका स्वभाव है इमोर्टालिटी। और दूसरा अर्थ है कि श्री चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम निमाई था, निताई निताई सॉरी निमाई था, और उनका दूसरा नाम चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। तो श्री कृष्ण चैतन्य का अमृतमयी चरित्र का वर्णन किया गया है। तो दोनों दृष्टिकोण से देखा जाए तो चैतन्य चरितामृत शुद्ध ग्रंथ है जो आत्मा के लिए है। प्रभुपाद जी यहां पर कहते हैं द वर्ड चैतन्य मीन्स लिविंग फोर्स, चरित्र मीन्स कैरेक्टर एंड अमृता मीन्स इमोर्टल। एज लिविंग एंटिटीज वी कैन मूव बट ए टेबल कैन नॉट बिकॉज इट डज नॉट पोजेस लिविंग फोर्स। मोमेंट एंड एक्टिविटीज मे बी कंसिडर साइन और सिम्टम ऑफ द लिविंग फोर्स। इंडीड इट मे बी सेड दैट देयर कैन बी नो एक्टिविटीज विदाउट द लिविंग फोर्स। ऑल दो द लिविंग फोर्स इज प्रेजेंट इन दिस मटेरियल कंडीशन, द कंडीशन इज नॉट अमृत इमोर्टल। द वर्ड चैतन्य चरितामृत देन मे बी ट्रांसलेटेड एज द कैरेक्टर ऑफ द लिविंग फोर्स इन इमोर्टालिटी। एनीवे इंट्रोडक्शन में बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है तो हम लोग शुरू कर दिए हैं। ये जो श्लोक है श्लोक एक दो और तीन मुख्य करके प्रथम श्लोक है। इस श्लोक में विषय वस्तु का निरूपण किया गया है। जैसे भागवत है, भागवत में 10 विषय वस्तु हैं। अत्र सर्ग विसर्गस्य अस्थानम पोषण उतय मनमंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। भागवत के 10 विषय वस्तु हैं उसका निरूपण शुरू में किया गया है दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में। वैसे ही गीता के 5 विषय वस्तु हैं ईश्वर जीव प्रकृति काल और कर्म। वैसे ही चैतन्य चरितामृत के 6 विषय वस्तु हैं जिसका निरूपण इस श्लोक के द्वारा किया गया है। वो विषय वस्तु क्या है पहले हम लोग देखते हैं और उन विषय वस्तुओं का यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रणति अपन करते हैं, प्रणाम कर रहे हैं, कहते हैं वंदे गुरुन ईश भक्ता। पहला है गुरुन गुरुओं का, दूसरा है ईश भक्ता भगवान के भक्तों का। ईश भगवान को, ईश अवतार का भगवान के विभिन्न अवतारों को, तत्प्रकाश और भगवान के विभिन्न विस्तारों का, तच्च और भगवान के स्वयं भगवान के संबंध में जिनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य यानी चेतन महाप्रभु के का। तो 6 तत्व जो हैं उसमें से प्रथम तत्व है गुरुन। इस अध्याय का भी नाम है द स्पिरिचुअल मास्टर्स। गुरु यहां पर वंदे गुरुन कहा गया है। कभी भी हम लोगों को गुरु शब्द कहा जाए तो गुरु से समझना चाहिए गुरुन, एक नहीं अनेक गुरु। यही वास्तविक समझदारी का ध्येय है या वास्तविक समझदारी का पहचान यही है कि गुरु शब्द जहां भी आए तो ये नहीं कि जिसको जिसने मुझको दीक्षा दिया वो, नहीं, वो बड़ा लिमिटेड समझदारी है, वो कनिष्ठ प्रकार का समझदारी है। गुरु का मतलब होता है गुरुन, हमेशा गुरुन गुरु पुलरल नंबर में है। हम लोग गाते हैं प्रत्येक दिन वंदे हम श्री गुरुन है और क्या है श्रीजित पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवास गुरुन, यहां पर गुरुन आया हुआ गुरुन वैष्णवास। तो सब के सब वैष्णव गुरु हैं, विभिन्न प्रकार के गुरु हैं। गुरु मतलब जो हमें कुछ शिक्षा दे, कुछ सिखाए, जो बतलाए, और मुख्य तौर के क्या बतलाए, एक लौकिक गुरु होते हैं और एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं, दोनों गुरु कहलाते हैं। पहले जमाने में हम लोग गुरु जी कहते थे स्कूल में, है आजकल चीटर कहते हैं या टीचर कहते हैं, जो भी कहते हैं, पहले गुरु जी कहते थे, बाद में शिक्षक हो गए, बाद में टीचर हो गए, तो पहले गुरु जी कहा जाता था। तो भौतिक ज्ञान को देने वाले भी गुरु होते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान को, तो यहां पर आध्यात्मिक ज्ञान से ही लेना चाहिए। तो गुरु का परिभाषा भगवत गीता में अर्जुन के द्वारा प्रदत्त है हम लोगों को। गुरु का क्या काम है, गुरु क्या करता है, कहते हैं कार्पण यदोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समुद्धचेत यस्त्रया निश्चितान ब्रूहि तन्मे शिशस्ते हंसादिमां त्वाम प्रपन्न। श्रेयान, श्रेयान गुरु का एक ही काम है कि श्रेयान अत्यंतिक कल्याण, अल्टीमेट बेनिफिट प्रदान करना, और अल्टीमेट बेनिफिट है कि कृष्ण से संबंध स्थापित कर देना। तो गुरु का एक ही काम है कि कृष्ण से संबंध स्थापित कराना, ये गुरु का असली धर्म है। जो कृष्ण से संबंध स्थापित कराता है वह गुरु कहलाता है। यदि एक कोई सामान्य व्यक्ति है, यदि हम जप कर रहे हैं हरे कृष्णा सो गए और दूसरा जगा दिया हमको, तो क्या हो गया, गुरु हो गया, क्योंकि हम माया में जा रहे थे, सो रहे थे, अब क्लास सुन रहे हैं और नींद आ गई, हमको भी आती है, बगल वाला जगा दिया तो हो गया गुरु, क्योंकि हमारा संबंध खत्म हो रहा था, टूट रहा था, लेकिन वो क्या किया, हमारे संबंध को स्थापित करा दिया। तो गुरु समझना बड़ा आसान है यदि हम समझना चाहें, तब हम लोग समझने का ढोंग करते हैं, फिर समझ ही नहीं पाते। जो हमको दीक्षा देता है उसको तो गुरुजी कहते हैं, और अन्य लोगों को, अब इस कान में इसकी पढ़ाई चल रही है डिसाइपल कोर्स, यही बात बताने के लिए, और गुरुओं को भी पढ़ाया जाता है कि गुरु कोर्स, तो गुरु और डिसाइपल कोर्स पढ़ रहा है, चलकर चल रहा है। शास्त्र बहुत क्लियर है, जन्म लेते हैं बाप मां प्रथम गुरु हुए, हमारे जीवन में बहुत लोग हैं जो गुरु का काम करते हैं। गुरुओं में भी कैटेगरी है, सब एक नहीं है, एक कहलाते हैं पथ प्रदर्शक गुरु, एक कहलाते हैं शिक्षा गुरु, और एक कहलाते हैं दीक्षा गुरु। पथ प्रदर्शक गुरु कई एक हो सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हमको यहां से जाना है रेलवे स्टेशन, और कोई व्यक्ति आपको एड्रेस दे दिया कि रेलवे स्टेशन जाने का एक रास्ता ए है, तो जिसने एड्रेस दिया वह कौन है, पथ प्रदर्शक गुरु। अब यहां से जाए, जैसा कहा गया यहां से चिड़ियाघर जाओगे, ये सीधे रोड जाएगा वहां चिड़ियाघर, अब चिड़ियाघर से रोड जाता है सीधे बाद में राइट, अब कहीं वहां भटक जाओ चिड़ियाघर पर जाकर के, और कोई दूसरा रिक्शा वाला है टंगा वाला जो भी मिल गया उससे भाई पूछ लो कि ये रास्ता ठीक चल रहा हूं मैं ना, तो वो भी कहलाता है क्या, पथ प्रदर्शक गुरु। तो जितने लोगों से पूछते जाओगे वो सब पथ प्रदर्शक गुरु है, कब तक, जब तक से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच न जाओ। लक्ष्य तक पहुंचने में पथ प्रदर्शक लोग हेल्प करते हैं, तो रास्ता बतलाते हैं। तो मंदिर में भी वैसे बहुत पथ प्रदर्शक गुरु हैं। उसके बाद हुए शिक्षा गुरु, जो शिक्षा देते हैं आध्यात्मिक राज में उन्नति करने के लिए, पथ प्रदर्शक गुरु ग्रॉस हुए, रास्ता दिखाते हैं बाहर से, आंख से दिखाते हैं। शिक्षा गुरु सटल हुए, यानी बुद्धि देते हैं। और दीक्षा गुरु जो होते हैं उनसे संबंध दिल से होता है, क्योंकि असली दीक्षा गुरु जो हैं वो हमारे दिल में बैठे हुए हैं, जिनका नाम है चित्त गुरु। वंदे कृष्ण जगत गुरु। तो जितने गुरु लोग हैं ये सब उन्हीं कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके ही ये लोग प्रतिनिधि हैं। तो असली गुरु बैठे हैं कहां पर? अरे हुंकारी भरो, दिल में, चित्त गुरु के रूप में। मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च इत्यादि उनका काम है, और वहीं से बैठकर के डायरेक्ट डायरेक्शन देते हैं। अब उन तक पहुंचने के लिए ये दो लेयर हमारे पास है, एक ग्रॉस है और एक सटल है। तो ग्रॉस स्टेज पर या ग्रॉस प्लेटफॉर्म पर जो सहयोग करता है वो कहलाता है पथ प्रदर्शक गुरु, और सटल स्टेज पर ज्ञान दे करके, दोनों प्रकार का ज्ञान, थ्योरेटिकल ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान, दोनों ज्ञान दे करके जो हमको आगे बढ़ाता है वो कहलाता है शिक्षा गुरु। इसीलिए मात्र लेक्चरबाजी करने से काम नहीं होगा, ये तो थ्योरेटिकल हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। यदि हम कहेंगे कि मंदिर मार्जन करना मतलब दिल को मार्जन करना है, तो भक्त शिक्षा ले लिए, लेकिन हमको भी करना चाहिए, हम भी मार्जन करेंगे तो वो जो व्यक्ति जिसको हम शिक्षा दिए हैं वह उसे अच्छे तरह से आत्मसात कर पाएगा। इसलिए भगवान आचरण पर ज्यादा जोर दिए हैं, यद यद आचरति सृष्टा तत्तत एव इतरतो जनः स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। इस श्लोक में देखा जाए तो आचरण पर तीन बार जोर दिया गया है, तीन विशेषण किया गया है, यत यत आचरति श्रेष्ठा तत् तत् चार बार, बल्कि यत यत और तत् तत् आचरण पर चार बार दो विशेषण दिया गया, यत यत और तत् तत्। लेकिन प्रमाण पर, थ्योरी पर केवल दो बार, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत् तत् देव इतर स यत प्रमाण कुरुते, यत एक बार प्रमाण पर, थ्योरी पर, सयत प्रमाण गुरुते लोकस तत् अनुवर्तते। थ्योरी पर केवल दो, आप लोग कुछ मतलब अपने से आ जाएगा, वो भी सुनने आया है, तो दो बार केवल उस पर जोर दिया गया है, लेकिन आचरण पर चार बार। चैतन्य महाप्रभु यहां पर आए हम लोगों को प्रैक्टिकल बात सिखाने के लिए, आपने आचारी प्रभु जगत ही सिखाए, अपने स्वयं आचरण कर करके जगत का वो शिक्षा दिए। कहते हैं कुछ लोग आचरण करते हैं और कुछ लोग शिक्षा देते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर आचरण भी करते हैं, असल शिक्षा भी देते हैं और आचरण भी करते हैं। तो शिक्षा गुरु एक नहीं अनेक हो सकते हैं, अनेक शिक्षा गुरु हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु मात्र एक होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं द इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर एंड इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर बोथ आर द इक्वल एंड आइडेंटिफिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा। देखिए ग्रॉस चीज को प्राप्त करना या छोड़ना कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है, ये शरीर ग्रॉस है, इस शरीर को प्राप्त करना और छोड़ना उतना कठिन नहीं है। ये जो शरीर है कर्म के अनुसार चल रहा है और शरीर प्राप्त होगा, कुत्ते का, गधे का, चींटी का, मच्छर का, मनुष्य का, कोई देह प्राप्त होगा। जीवात्मा बिना देह के कभी नहीं रह सकता है। तो इस देह को प्राप्त करने में और इस देह को छोड़ने में ज्यादा परिश्रम नहीं करना है। हम तो देह छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, कोई देह नहीं छोड़ना चाहता है। असली स्ट्रगल जो है वो जो सटल देह है उसको छोड़ने में, मन बुद्धि अहंकार से जो बना हुआ देह है उसको त्यागने का असली स्ट्रगल है। इसीलिए प्रभुपाद जी अपने पुस्तकों के प्राय प्रत्येक पेज में कहे हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर ए स्पिरिट सोल। बार बार क्यों कहा जाता है? ये शिक्षा है ताकि हमारे भेजा में, बुद्धि में ये समझ में आए कि हम लोग देह नहीं है, हम आत्मा है। तो ये सटल चीज है। तो सटल वस्तु के त्याग के लिए हमें शिक्षा की जरूरत पड़ती है, ग्रॉस के लिए नहीं। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति बहुत कुछ जान लेता है। देखिए ना, ये मोबाइल फोन में इतना छोटा चिप्स के द्वारा हम ऑल ओवर वर्ल्ड बात कर लेते हैं, वो कैसे प्राप्त हुआ? ये ग्रॉस बॉडी से हुआ? नहीं, वो सटल बॉडी के द्वारा। किसी के ब्रेन किसी का काम किया है, प्लेन उड़ रहा है, कितने लोगों का जीवन उसमें है एक्यूरेटली, ये किसी का ब्रेन उसमें लगा हुआ है, सटल बॉडी। वैसे ही सबसे फाइनेस्ट इंजीनियर हैं ब्रह्मा जी, जो बिना डीजल और पेट्रोल का प्लेन उड़ा देते हैं, कितने उड़ते रहते हैं आकाश में, और उनसे भी फाइनेस्ट जो है वो है भगवान, सुप्रीम इंजीनियर जो है भगवान। यंत्रारूढ़ानि माया, कैसे माया के द्वारा यंत्र को चलाते हैं, चला मयाधक्षेण प्रकृति सुयते चराचरम हेतुनानि वकौन्तेय जगत परिवर्तते। भगवान कैसे माया के द्वारा सबका सब कार्य कराते हैं और माया उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो ब्रेन का मतलब सामने तो सोचना ठीक है, लेकिन जिसको हम नहीं देख सकते हैं उसको देखना ब्रेन का काम है। जो देखना जो सामने है यह देखना तो आंख का काम है, वो ग्रॉस है, लेकिन जिसको नहीं देख सकते हैं वह देखना ब्रेन का काम है। जैसे कभी कभी हम कुछ गलती कर देते हैं, कहते हैं भाई योर ब्रेन, तुम्हारा बुद्धि कहां है, देखा नहीं उसको, यहां बैठे बैठे What happened is not the matter. What can happen? वो ब्रेन का काम है। तो वह शिक्षा गुरु का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट देखा जाए तो स्पिरिचुअल लाइफ में शिक्षा गुरु का ज्यादा महत्व है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु के विषय में, लेकिन डे टू डे लाइफ में शिक्षा गुरु का ज्यादा महत्व है। दीक्षा गुरु पहले का अलग तरीका था दीक्षा का, और आज का दीक्षा का अलग तरीका है। पहले दुर्वासा मुनि 60,000 चेलों को दीक्षा दे दिए, और 60 के 60,000 चेले उनके साथ में चलते थे, जहां जाते साथ में चलते थे। उस समय मंदिर वंदिर नहीं माना था, कोई मंदिर का प्रेसिडेंट है, मंदिर सफाई करने वाला चाहिए, वो सब नहीं था, वो सब व्यवस्था था, वो अलग बात है। या गुरु आश्रम है जहां पर सब लोग हैं, लेकिन सब जगह भी शिक्षा गुरु का स्पेशल ही पोजीशन है। इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रत्येक चैप्टर के अंत में अपने समस्त शिक्षा गुरुओं को प्रणाम किए हैं। अंतिम श्लोक जो है प्रत्येक का, श्री रूप रघुनाथ पदे यार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। गुरु को प्रणाम करते हैं शुरू में भी और अंत में भी। तो यहां पर कहते हैं श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस। रूप रघुनाथ यानी स्वर्ग गोस्वामियों के चरणों में भी प्रणाम करते हैं और इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत का ये अनुलेखन किए हैं, लिखन किए हैं। मैं कहता कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु बोथ आर इक्वल एंड आइडेंटिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्ण। वन कैन हैव मेनी शिक्षा गुरु बट वन शुड हैव ओनली वन दीक्षा गुरु। तो यहां पर वंदे गुरुन पथप्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। तो पूरे चैतन्य चरितामृत में इन लोगों का वर्णन किया गया है, पथ प्रदर्शक गुरुओं का भी। शिवानंद सेन का एक कुत्ता था उसका भी गणना आता है पथ प्रदर्शक गुरु के रूप में। कुत्तों का काम क्या है? पारा देना। हम तो रात को सो गए हैं, कुछ अनहोनी हो जाए, कोई घटना हो तो कुत्ते भौंकते हैं तो हमको जगा दिए, तो रास्ता दिखाए, तो पथ प्रदर्शन गुरु हुए। तो इस प्रकार से पूरे चैतन्य चरितामृत में इनका वर्णन किया गया। मुझे याद है एक बार हम लोग, हमारे एक मित्र थे, अब नहीं है इस संसार में, उनका नाम था ब्रजनंदन प्रभु, हम दोनों क्लास में थे। हम एक बार पूरा चैतन्य चरितामृत पढ़ करके नोट बना रहे थे कि कौन कौन पथ प्रदर्शक गुरु है, कौन शिक्षा गुरु है और कौन किसका दीक्षा गुरु है। वो हमारा प्रोजेक्ट हाफ वे रहा, वो बेचारे चल बसे और मैं बॉम्बे जाकर के स्टक हो गया। नहीं तो पहले हम प्लानिंग कर रहे थे। तो हो सकता है हमारे अधूरे काम को कोई आप लोग कर लेना। पूरा चैतन्य चरितामृत पढ़ो और उसमें से पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का लिस्ट बनाओ। इतना बड़ा नहीं, 17 वॉल्यूम नहीं होगा, लेकिन एक वॉल्यूम जरूर हो जाएगा, एक आधा वॉल्यूम इसमें है। एनीवे, तो वंदे गुरुन ईश भक्ता। तो पहले गुरु का, उसके बाद ईश भक्त। ईश मतलब भगवान और भक्त मतलब भक्त। हमें भगवान और भगवान के भक्त के संबंध में सुनना चाहिए, यही सुनने का विषय वस्तु है, भगवान और भगवान के भक्त। दशम स्कंद भागवतम में भी एक सब्जेक्ट मैटर यही है। पोषण उदय मनो ईशानुकथा, ईशानुकथा है और यहां पर ईश भक्तान, वहां पर ईश अनु, ईश मतलब भगवान और अनु मतलब फॉलोअर, भगवान और भगवान के फॉलोअर का बात भागवतम में किया गया है। ईशानु कथा, उसके बाद निरोध, वैसे ही ठीक वैसे ही आ रहा है ईश भक्तान एंड ईश, वहां पर निरोध आया हुआ है। निरोध भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन है दशम स्कंद, और यहां पर इस मतलब भगवान चेतन महाप्रभु के संबंध में। तो इस भक्तान, भक्त बहुत हैं संसार में, भक्त कौन नहीं है संसार में, सब के सब भक्त ही हैं। अंतर इतना ही है, भक्त क्यों है? क्योंकि वे भगवान के अंश हैं। भज धातु से बना हुआ है, भज मतलब होना, किसी का होना। तो जीवात्मा किसी का है, और किसका जीवात्मा है? भगवान का। भगवान गीता में कहते मामे अंश जीवलोक जीवभूत सनातन। तो जितने जीवात्माएं हैं वो भगवान की है। तो भगवान का होना, भज मतलब होना। ये हैं, अब वे भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, भजन नहीं कर पा रहे हैं, हैं लेकिन संबंध जो है उसको स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। जीव दूसरे का नहीं हो सकता है, जीव माया का अंश नहीं हो सकता है, जीव चींटी और पहाड़ का अंश नहीं हो सकता है, जीव जब भी अंश होगा तब भगवान का अंश होगा। और इसी बात को याद करना भक्ति कहलाता है, और जो व्यक्ति याद करता है वो भक्त कहलाता है। तो ईश भक्त यानी जो ईश के यादगारी में लगा हुआ है वो भक्त कहलाता है। पहले जमाने में यादगारी करने के तरीके थे, और अच्छा तरीका था रट करके याद करना। आप लोग जानते हैं रट करके याद करना है, क ख ग घ अंग पढ़ते थे है? जोर से उच्चारण करते थे, और इस प्रकार से वस्तु को हम याद कर लेते थे। तो वही बात आज भी है, ईश को याद करना है, भगवान को याद करना है, तो रट रट करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान को याद करने का बड़ा सरल तरीका है। ये भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। पहले हम लोग छोटे थे पढ़ते थे, चाहे जो भी रट करके यादगारी आती है, विद्या प्राप्त नहीं होती, केवल यादगारी होती है, बस फर्स्ट स्टेज, नॉलेज दूर है। नहीं तो हमारे एक पंडित जी थे, संस्कृत के पंडित थे, कहते थे रटंत नहीं चपंत भोजनम पचंत नहीं, दबा करके यदि खा लो तो पचेगा नहीं। और कैसे रटंत क्या बोलते थे, रटंत विद्या अवंत नहीं, ऐसे कुछ बोलते थे। नहीं हमारे पंडित जी बोलते थे, बोलता हूं संस्कृत के पंडित थे, रटंत विद्या अवंत नहीं चपंत भोजनम पचंत नहीं। तो रट करके याद करो तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, स्मृति बना रहेगा। जैसे मैं वो कहानी कहता हूं ना कि वो शिकारी था और उसके चार पांच नहीं एक बैलिया एक आदमी था, उसके पास तोते थे, गुरुजी थे, और तोते पढ़ा बेटा पढ़ो, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, उसमें लोभ से फंसना नहीं। तो बेटा रट करके याद तो पूरा कर लिए पूरा, और डेली पढ़ते थे शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा उसमें लोभ से फंसना नहीं। उनको मालूम शिकारी किस जानवर का नाम है, दाना क्या होता है, जाल कैसा होता है, उसे मालूम नहीं था। एक दिन शिकारी आया जाल बिछाया दाना डाला, सब उसे फंस गए हैं और पढ़ रहे हैं शिकारी आएगा जाल बिछाया दाना डालेगा उसमें लोभ से फंसना नहीं, सब पढ़ रहे हैं। तो स्मृति तो हो जाए, ज्ञान हो जाए, मतलब कि यादगारी हो जाएगी, लेकिन ज्ञान नहीं होगा। और वह जो ज्ञान है वह होता है गुरु के कृपा से। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय। तो इसका मतलब है ना कि केवल दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, प्राय शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि द इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर बिकम्स द इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर लेटर ऑन, ऐसे ही कुछ है कि तो कहते हैं इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर जिसे हम डेली इंटरेक्ट करते हैं वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा हमारी जो पद्धति है वो दीक्षा पद्धति नहीं है, ये परंपरा हम लोगों की है, वो डिसिप्लिक सक्सेशन जो है वो शिक्षा की पद्धति है, दीक्षा की पद्धति नहीं है। तो शिक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शिक्षा से ज्ञान अर्जित होता है। दीक्षा से ज्ञान अर्जन करने की योग्यता प्राप्त होती है। जैसे स्कूल में कोई जाकर के नामांकन कराता है, वो तो घर भी पढ़ सकता है, लेकिन स्कूल में क्या, कॉलेज में क्या, वो नामांकन करना मतलब दीक्षा लेना। असली जो ज्ञान है वो शिक्षा के द्वारा प्राप्त होता है, जो कि शिक्षा गुरु से भी ले सकते हैं, दीक्षा गुरु से भी ले सकते हैं। दीक्षा गुरु का मतलब नहीं कि वो शिक्षा गुरु नहीं है, वो शिक्षा गुरु भी है, वो शिक्षा दे सकता है। तो इस भक्तान, इस भक्तान, भगवान के भक्तों का वर्णन चैतन्य चरितामृत में किया गया। इस भक्तान, ईसम, यहां पर सब बहुवचन है, गुरुन बहुवचन है, इस भक्तान बहुवचन है, लेकिन ईसम एक वचन, क्योंकि भगवान कितने हैं, हजार हैं, भगवान एक हैं, एकल ईश्वर कृष्ण एक ही। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयंती जुगे जुगे।